اللہ کرے کہ لوگ اس سے کوئی عقل سیکھیں. حالانکہ بنجمن نتن یاہو کو خود اگر وہ ان جنگوں میں سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ ایک بار پھر الیکشن ہو جائیں گے اور ان کو بھی کرمنل کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے ملک میں جو پرابلمس ہیں, امریکہ کی طرف آ جائیں تو ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک بھی بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے ان امریکہ, اس سے پچھلے ویک بھی بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ریٹنگ -21 پوائنٹ کے اوپر چلی گئی ہے, دا منیمم پاسبل ریٹنگ پہ ہے اس وقت وہ. تو بہرحال اللہ بہتر کرے. بہت شکریہ سر آپ.
دیکھیے میں تو صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں, پلیز ہیو فیتھ ان پاکستان. میں پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہیو فیتھ ان یور سیلف, ہیو فیتھ ان پاکستان. پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کے جس ہاتھ چاہے گا اٹھا کے اپنی مرضی کے داخل کر دے گا. الحمدللہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہے. پاکستان ایک الحمدللہ انتہائی مضبوط ملک بھی ہے. پاکستان کی قوم بھی بڑی پرعزم قوم ہے اور جس نے یہ واضح دنیا کو ثابت کر دیا ہے, اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت.
بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ کبھی کبھی ٹائم دے دیا کریں, دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی
انشاءاللہ.
آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ظاہر ہے دیر آر ٹائمز میں ایک کنٹری کو ایک گھر کی طرح سے لیا کرتی ہوتی ہوں. ہم بھی اپنی اسٹریٹجی وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اس وقت کون سے مسائل کا سامنا ہے اس کے مطابق. آئی فیل ویری سیڈ کہ ہم وہی اپنی ذاتی گھر کی لڑائیوں کے بیچ میں ہی پڑے ہوئے ہیں, کس کو ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے گا 1953 سے اب تک لے کے جائیں تو ایران کی رجیمی تیسری بار چینج ہونے لگی ہے. ہمارے اپنے اندر ہی اسپائز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے اندر ہی ہم کو ڈیمیج کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی وش کہ اس وقت ہم ملک کا سوچیں, بہتری دنیا کی بقا کا سوچیں. ابھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ویب سائٹ پہ ضرور تشریف لائیں. اٹس ویری ایزی, www.eawaz.com. ضرور تشریف لیں. اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
تانو پرسنل سپورٹ ورکر کیوں بننا چاہیے؟ دجیاں دے جیون وچ بدلاؤ لیاون لئی صرف 5 مہینیاں وچ اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اتے دیکھ بھال وچ اپنا کریئر شروع کرو. ودھیرے جانن لئی ontario.ca/gopsw تے جاؤ. اس لیے ادائیگی انٹیریو سرکار ولو کیتی گئی ہے.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو. ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, بیکاز وی کیئر.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 Kennedy Road, برامپٹن, 9058747471.
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One time payments, long term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਵਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਵਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-840-9000-905-840-9000।
ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350,
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100,
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ,
6476293773। ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ। ਬੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ, ਸਕਾਰਪੁਰੋ, ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 416-264-3111।
Valia Traffic Legal Services se Janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red light ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112
ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਯਕੀਨ ਕੀ ਹੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਪਾਸ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਬਾਇੰਗ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਯਾ ਫਿਰ ਕੋਨਵੀਨੀਅਮਸ ਇਨ ਦੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ।
ਵੀ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਯੋਰ ਮੋਰਗੇਜ,
ਆਲਸੋ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਿਫਟ।
ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ,
ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਯਾ ਘਰ ਕੋ ਬੇਚਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਘਰ ਕੀ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ ਆਰਿਫਾ ਮੁਜ਼ਫਰ, 6478986245 8986245।
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں گرما گرم خبریں لے کر شامل ہو چکی ہیں شازیہ ملک صاحبہ۔ یہ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟
ڈبلیو ایس ہم ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو؟
الحمدللہ، دعائیں آپ کی ہیں؟
بس گرمی بہت بڑی ہے پاکستان میں، لیکن تمہیں پتا ہے ملتان میں برف گری ہے۔
پاکستان میں گرمی پڑ رہی ہے اور ملتان میں برف گر رہی ہے،
حالانکہ وہاں پہ 50-50 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ کیسے آپ سوچو، پوچھو کیسے ملتان میں برف گری ہے؟
آپ کا سلطنت بگڑ گیا،
بچہ جو برف لے کے جا رہا تھا
اور گر
گیا سائیکل کر کے۔
مجھے لگ رہا ہے یہ 5th کلاس سے بھی نیچے والی کلاس کا کچھ جوک ہے،
تو اسی لیے تو ہم نے آپ کو سنایا۔
بہت ہی مطلب
تھکیلا تھا
میں،
تو برف تو گری نا وہاں پہ بھائی۔
بات تو صحیح ہے،
بات تو صحیح ہے نا،
برف تو گری،
برف تو گری۔
وہ
بےچارا جو اتنا بڑا جو وہ تودا تھا لے کے اس کا جا رہا تھا، وہ گرا اور وہ ٹوٹی، تو برف
جو دکان سے لے کے نہیں برف خریدتے ہیں
وہی، تو برف خرید کے دکان سے ہی تو جا رہا تھا کہ اس کی سائیکل وہ
گر گئی،
ٹھڈا بےچاری کو لگا
برف گری،
برف گری۔
تو ملتان میں بھی برف،
برف گری
50 ڈگری ٹیمپریچر آپ کے اوپر تو نہیں گری؟
نہیں، میرے پہ گرتی تو میرا تو کیما ہو جاتا بالکل،
نہیں برف برف
پگھل جاتی ہے
آپ کی، جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو جذبات ہیں احساسات ہیں
ان کی گرمی سے
وہ اور پھر وہ جو آپ کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ نیگیٹو وہ تو بند کر دے گا فوراً
بالکل پانی بنا دے
کسی کو ٹک نہیں نہ دے وہ
ہاں پانی بن جاتا ہوگا
پانی پانی شرم سے پانی پانی ہوگا اس میں ڈوب جائے گی وہ برف خود اس میں ڈوب جائے گی اچھی بات ہے آپ نے جوک سے مطلب بالکل آپ نے موڈ ایک دم اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہوں کیا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا بندے نے کہا یار وہ آج یہ بات کریں گے فلاں کریں گے آپ نے جب یہ جوک سنا دیا اس کے بعد
میں جاؤں کھیلوں
مجھے ایسا لگا
کہ
لائف تو برباد ہو گئی
برباد ہو گئی
اس جوک کے بعد کچھ بچے نہیں
یہی بات ہے کہ میں اور مجد بھائی ہم کیا انجوائے کرتے تھے گریڈ فائیو کے جوکس گریڈ فائیو کے جوکس ہم جو ہے نا وہ کرتے تھے
صحیح بات
تو تم بھی اب اسی کا انجوائے کا مزہ لو
نہیں میں تو بہت مزہ لے رہا ہوں اتنا مزہ لے رہا ہوں کہ میں سب کچھ
پتا چلا کہ گاڑی لے کے نکل جانا چاہتے ہو اب تم
نہیں میں کہیں اور نکل جاؤں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یار عامر بھائی اس سے بہتر ہو سکتا تھا مجھے
اچھا اچھا نہیں نہیں
برف والا جو آپ نے جوک سنا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا
ہاں دے گا
لیکن بہرحال سامعین آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے اور تھوڑی دیر میں بس آپ کو گرما گرم خبریں سناتے ہیں اور خبروں کا یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچایا ہے بٹالہ سپر مارکیٹ نے جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی ہو رہی ہے اینیورسری سیل تو اینیورسری سیل کیا ہو رہی ہے ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی 22nd اینیورسری یعنی ان کو 22 سال ہو گئے ہیں بٹالہ سپر مارکیٹ کو اور ان کی 22nd اینیورسری ہونے جا رہی ہے 20 اور 21 کو یعنی
3 days
فرائیڈے اور سیٹرڈے کو تو ان کی اینیورسری سیلیبریشن ہے لیکن سیل آپ کو 3 دن ملے گی یعنی 20, 21, 22 فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ کو سیل ملے گی دھماکہ سیل ہے اور ہر چیز میں $2 سے $3 تو ایٹ لیسٹ کم ہے کچھ چیزوں میں اس سے بھی زیادہ آپ کو سیلز مل جائیں گے اگر آپ نے گروسری آئٹمس خریدنے ہیں تو بٹالہ سپر مارکیٹ آپ پہنچیں اور فیملی فن ٹش مزے بھی وہاں پر ہوں گے فن ٹش مزے آپ کا جوک ہو گیا ہم نے کچھ بولا تھا برف گر گئی ملتان میں گر گئی وہاں گر گئی ہم نے کوئی آبجیکشن لیا مائی لارڈ کچھ بولا ہم نے سنا نا ہنسے بھی ہم اس پہ تو ابھی فن ٹوش بھی آپ نے ہنسنا ہے
اچھا ٹھیک ہے وہی تو ہنس رہے ہیں ہنس تو رہے ہیں
یہ کیا سوال نہ پوچھیں یہ کیا
فن ٹوش
فن ٹوش آپ نے اگر مزے لینے تو آپ نے بٹالہ سپر مارکیٹ پہنچنا ہے کب آپ نے پہنچنا ہے دوپہر 12 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک یہ فن فیسٹیول وہاں پر ہوگا 2 دن فری سیمپل بھی آپ کو وہاں دیے جائیں گے 200 مارکم روڈ اسکارپرو 200 مارکم روڈ اسکارپرو بہت ہی زبردست سیلز آپ کو وہاں مل جائیں گی تو جائیں تو سازو آواز کا ریفرنس ضرور دیں اس کے علاوہ جناب اگر آپ نے ای آواز ٹی وی دیکھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی آئی پی ٹی وی پہ چینلز دیکھنے ہیں تو آپ نے فاسٹ وے آئی پی ٹی وی اپنے گھر لے آنا ہے بس جناب اس سے اگر آپ کے گھر میں فاسٹ وے آئی پی ٹی وی نہیں ہے تو آپ کی زندگی بس
خراب ہے
بس کیسے گزر رہی ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہوں گے اس میں کیا آپ کو فائدہ ہوگا جناب آپ کو $216 میں 2 سال کی آپ کو سبسکرپشن ملے گی اور آپ کو آئی پی ٹی وی بھی اس میں انکلوڈ ہوگا اور آپ نے کال کرنا ہے 1-866-692-4788 1-866-692-4788 اور کال کریں تو سازو آواز کا ریفرنس بھی ضرور دیجیے گا $216 میں 2 سال کی سبسکرپشن انکلوڈنگ باکس اور $360 میں 5 سال کی سبسکرپشن انکلوڈنگ باکس آپ کو مل جائے گا فاسٹ پے آئی پی ٹی وی جی شادی جی
تو دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی کیو ٹی ایل جی کوئک ٹرک لیوب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل اپنا ٹرک بھگاتے ہی چلے جائے بس روکے نہ اس کو تو آپ کو کوئک ٹرک لیوب کی جو نیپنی کی خاص طور پہ لوکیشن ہے وہاں پہ جانا پڑے گا بہت زبردست قسم کے یہ ان کے مکینکس بھی ہیں آپ کا دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کیا ٹرک کا پرابلم ہے اور جلدی جلدی کام کرتے ہیں تو آپ ان کو ضرور وزٹ کریں ان کا نمبر ہے 1519-622-0660 اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو آپ فیصل چٹا صاحب کے اب 2 ریسٹورینٹس ہیں ولیج ٹیسٹ ایک مسز آگا میں ہے اور ایک اوکویل میں ہے تو آپ ادھر جا کے اور انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں اور ابھی تو آ رہا ہے وہ ویکینڈ بھی آ رہا ہے تو آپ ولیج ٹیسٹ پہ ضرور جائیں وہاں پہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوتھینٹک لے کر آئے ہوئے ہیں ہم شیفس اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھا کال کر لیں ان کو فیصل چڑھا صاحب کو 8647774488 اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھے کپڑے پہننے ہیں تو پھر آپ سپیئر اینڈ مکے پہ جائیں 775
रानिया रोड वेस्ट के ऊपर है और इनका नंबर है 9056703388। और अगर आपको बहुत ही अच्छा किस्म का जो अप्लायंसेज का सेट चाहिए और मार्केट से उसका रेट भी आपको कम चाहिए तो आप सुल्तान भाई के पास जाओ। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज 801 बुवेड ड्राइव वेस्ट पे है। इनका नंबर है 9054502828। आपके फैमिली में कोई भी इवेंट आ रहा है, शादी ब्याह कोई ग्रेजुएशन, तो फिर आपको कोई गोल्ड का आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप असलम भाई को फोन करें पायल ज्वेलर्स के ऊपर। पायल ज्वेलर्स पे वो कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर और दुबई से बहुत जबरदस्त हम ज्वेलरी लेकर आए हैं। 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में है। इनका नंबर है 9057907879। दांत खराब हो गए हैं आपके तो डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाइए। उनके अब तीन क्लिनिक्स हैं, दो ब्रैम्पटन में, एक मिसिसागा में। तो अगर ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। ठीक है जी। अच्छा जनाब, जो पहली खबर है हमारी वॉच कॉर्नी साहब के मुतालिक है। लोगों ने बहुत ज्यादा इनकी तारीफ की जो इन्होंने होस्ट किया था अभी G7 का मीटिंग, तो उन्होंने कहा जी बहुत ही सक्सेसफुल इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज कराया यहां पे कनेन 6 में, ये जो अल्बर्टा के अंदर था और उसके अंदर बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स और जो हेड्स ऑफ द स्टेट आए हुए थे उनके साथ इन्होंने मुलाकातें किए। और जाहिर है कि इसके अंदर जो मेन इनकी अब स्टेटमेंट आई है उसमें यही उन्होंने कहा कि इसराइल तो है, इट हैज इट्स राइट टू डिफेंड इट सेल्फ, लेकिन ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी ये लड़ाई जो है और ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। कॉर्नी साहब जो हैं उसकी भी बड़ी तारीफ की गई कि जिस तरह से उन्होंने ट्रंप साहब को हैंडल किया और G7 की प्रायोरिटीज जो हैं ग्लोबल सिक्योरिटी वगैरह उनको सामने रखा और बहुत ही वो कहते हैं जी प्रोडक्टिव सेशंस जो हैं वो किए, हालांकि ट्रंप साहब जो है वो जल्दी चले गए थे। टू डे जो समिट था इसमें ट्रंप साहब ने वो कहते हैं जी कि बहुत अच्छे तरीके से सारों के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, बहुत समझदारी से सारों के साथ मिले। डकफोर्ड साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कार्नी साहब को, जैसे उन्होंने हैंडल किया ये सारा कुछ, खासतौर पे ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब भी जिस वक्त एयरफोर्स वन पे जा रहे थे तो रिपोर्टर्स के साथ बात करने के लिए कहने लगे कि जी मेरा मैंने बहुत अच्छा टाइम यहां पर गुजारा। पिछली दफा तो आपको पता है ट्रूडो साहब थे तो बहुत ही ये गुस्से में, पता नहीं क्या इनका बैर था ट्रूडो साहब के साथ, हालांकि ही वॉज सच अ कर्टियस एंड स्वीट मैन, लेकिन बस वो था इनका बैर उनके साथ। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो हैं वो अब क्योंकि फ्रांस में होगा G7 नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि कॉर्नी साहब ने बहुत अच्छे से इसको निभाया है और ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड रखा है। उन्होंने कहा जी कि अब ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि दुनिया में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो कैनेडियंस उसको रिजोल्व करेंगे, ये बड़ा ही अनफेयर है, लेकिन कॉर्नी साहब ने ग्रुप को इकट्ठा रखा विद एलिगेंस एंड डिटर्मिनेशन। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि कॉर्नी साहब का जो मुलाकातें मोदी जी के साथ हुई थी तो उसमें भी अब इन्होंने ये अग्री किया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं अब हाई कमिश्नर्स जो हैं उनको डिप्यूट करेंगे, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई थी इन दोनों के बीच में, जाहिर है कि वर्बल लड़ाई, तो उसमें जो हाई कमिश्नर्स हैं वो एक दूसरे के बुला लिए थे और वो कहते हैं जी कि हम बिल्कुल रेगुलर डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो हैं वो अब दोनों कंट्रीज के बीच में हम रखेंगे। आज एक फिर से बहुत बड़ी जो सीसीज है हमारी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उनकी फिर से आज एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है वो बेतहाशा यहां पे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अपने कॉकस के लोग भी बोल रहे हैं कार्नी साहब के और भी दुनिया कह रही है कि भई क्यों मरे जा रहे हो आप इंडिया के लिए, क्यों उनके साथ आप इतने जो है वो रिलेशनशिप्स करना चाह रहे हो, क्योंकि आज की भी जो सीसीस की रिपोर्ट है वो कहते हैं जी कि ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मारने के लिए जो है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा नेटवर्क है जिसका हेल्प ले रहे हैं और इसमें यहां पे कनाडा में चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ट्रांस नेशनल रिप्रेशन जो है वो चला रहे हैं और जो भी कोई इंडिया की मर्जी के खिलाफ बात करता है तो ये बहुत सारी उस तरह की मलाइन एक्टिविटीज के अंदर इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है। उसमें उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, उसमें कहा जी के जो ईरान है वो भी इसके अंदर कुछ कुछ जो है इन्वॉल्व है। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारी जो वायलेंस यहां पे कनाडा में करवा रहे हैं ये गैंग वायलेंस के साथ रिलेटेड है। सीसीस की ये रिपोर्ट कहती है जी कि RCMP कहता है कि हमारे पास एविडेंस है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स जो हैं उनके क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं फॉर वायलेंट एक्टिविटी इन साउथ एशियन कम्युनिटी, और कनाडा को बहुत ज्यादा विजिलेंट यानी कि सावधान यानी कि बहुत मोहतात रहने का जरूरत है, क्योंकि ये फॉरेन इंटरफेरेंस जो कर रही है इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ایتھنک نہیں بلکہ ریلیجیس اور کلچرل کمیونٹیز کے اندر بھی کر رہی ہے اور کینیڈا کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی یہ لوگ خراب کر رہے ہیں. لاسٹ اکتوبر بھی آر سی ایم پی نے کہا تھا کہ انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس جو ہیں دے ور لنک ٹو مرڈرز اینڈ ایکسٹورشنز اور بہت سارے ادر کرائمز ان ڈفرنٹ پروونسز آف کینیڈا, اور انہوں نے وارن کیا تھا ان تمام ہی وکٹمز کو کہ بھئی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں. اس میں ابھی ہم نے آپ کو دو دن پہلے بھی بتائی تھی کہ اس میں جگمیت سنگھ صاحب جو کہ فارمر این ڈی پی کے جو تھے لیڈر تھے فیڈرل, ان کو بھی انہوں نے کہا تھا, تو اس کا بھی اس میں رپورٹ میں ذکر ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انٹیلیجنس سروس جو ہے جو کہ رپورٹ کرتی ہے مودی جی کے آفس کو ڈائریکٹلی, یعنی یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے سیزز کا. سیزز کہہ رہی ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ ظاہر ہے را ہی ہے جو کہ رپورٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی پی ایم او کو یعنی کہ مودی جی کے آفس کو, وہ یوز کر رہے ہیں لارنس بشنوئے کرمنل گینگ کو اپنا ڈرٹی ورک کرنے کے لیے یہاں پہ کینیڈا کے اندر. بی سی کے پریمیئر جو ہیں ڈیوڈ ایبی, انہوں نے بھی پرائم منسٹر جو کارنی ہے ان کو کہا کہ یہ بشنوئے گینگ جو ہے اس کو گورنمنٹ کی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں ڈالو. انڈیا جو ہے اس کو کانسٹنٹلی کینیڈا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرو, اور آر سی ایم پی جو ہے اس نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے انسیڈنٹس میں انڈین گورنمنٹ کو بولو کہ کوآپریٹ کریں, اور انڈین گورنمنٹ بالکل نہیں کر رہی ہے. کینیڈین افیشلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کا جو رائٹ ہینڈ مین ہے امت شاہ وہ اس کے لیے ریسپانسبل ہے. یہ جو اینول رپورٹ آئی ہے اس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بتایا ہے, اور اس میں انہوں نے ایکیوز کیا اس کے علاوہ بہت سارے انڈین گورنمنٹ نے پراکسی ایجنٹس جو ہیں یہاں پہ کینیڈا کے اندر جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں کینیڈین کمیونٹیز کو اور پالیٹیشنز کو, اور وہ الائن کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کو مودی جی کے انٹرسٹ کے ساتھ, خاص طور پہ یہ جو خالصتان کی موومنٹ ہے اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی کہ سی سی ایس کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ مودی جی کی جب سے ری الیکشن ہوا ہے انڈیا کا جو پولیٹیکل کورس ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے ہندو نیشنل پالیسی کا ایجنڈا, اور وہ تبھی سے شروع ہو گیا تھا جب سے مودی جی پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے 2014 میں. سی سی ایس کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ نہ صرف مودی جی بلکہ ان کے کور منسٹرز اور ایڈوائزرز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہندوستان کا بول بالا رہے, اور کوئی بھی ایسا آدمی جو کہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر ان کے ایجنڈے پہ نہیں چلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ یہ جو ہے فورن انٹرفیئرنس اور اسپائناج کے جو چارجز ہیں اس رپورٹ نے بھی انڈیا کی گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. تو آج پھر سے لوگوں نے بہت سارے کوشچن کیے ہیں کارنی صاحب کے ساتھ کہ بھائی جان کیوں مرے جا رہے ہو ہندوستان کے ساتھ, آپ دوستیاں کرنے کے لیے تھوڑا آپ کو سختی کرنا پڑے گا. موسٹ کینیڈینز جو ہیں جی وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کینیڈا پوسٹ کے جو میل ڈلیوریز ہیں ان کو ڈیکریز ہونا چاہیے, اور دوسرے بھی کچھ بڑے چینجز جو ہیں وہ اس میں آنے چاہیے. 7 in 10 یعنی کہ 72% جو سپورٹ ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے فار میل ڈلیوری ٹو 3 days per week. وہ کہتے ہیں جی کہ روز روز ایسے ڈلیور کرنے کا ضرورت نہیں ہے. 52% بلیو کرتے ہیں کہ کینیڈا پوسٹ جو ہے ان کو یوز کرنا چاہیے نان یونین گگ ورکرز ٹو ڈلیور میل اور پارسلز, کیونکہ اس سے کاسٹ بھی کم آئے گی اور سروس میں ایفیشنسی بھی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پول آیا ہے اینگس ریڈ انسٹیٹیوٹ کا, اس نے بھی کہا ہے کہ 59% لوگ جو ہیں اپوز کرتے ہیں کہ اس کو جو کراؤن جو کارپوریشن ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کر کینیڈا پوسٹ کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. 26% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن کراؤن کارپوریشن کی جا رہی ہے اس کے خلاف جو ہے 47% ہیں, 38% اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے, جتنے بھی آپ دنیا ہے وہاں پہ پوسٹ باکسز ہیں وہ پوسٹ باکسز میں سے جا کے لوگ اپنا میل خود ہی لے آتے ہیں. بہرحال جی یہ سسٹم ادھر چل رہا ہے. اسٹیٹس کینیڈا کی آج یہ خبر آئی ہے جی کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر میں اتنی زیادہ نہیں بڑھی ہے. پاپولیشن جو ہے یہ رائز کی ہے 20,107 سے January 1st سے April 1st کے بیچ میں, اور 41 ملین کو اب یہ ذرا سا اوپر ٹچ کر رہی ہے جو کہ اسمالسٹ انکریز ہے سنس 3rd quarter of 2020 جب یہ جو پاپولیشن ہے یہ کانٹریکٹ کی تھی بائی 1,232. یہ انکریز جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا چھوٹا ہے پاپولیشن کے اندر کہ اس کو بالکل نیگلیجبل سمجھا جا سکتا ہے, نو گروتھ کے اس میں بھی آ سکتا ہے یہ. اور یہ 6th consecutive quarter ہے آف سلور پاپولیشن گروتھ, اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو اس میں لیول جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن کیے تھے, یعنی کہ اس کا لیول اس لیے کم ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیے تھے 2024 میں کہ ٹیمپرری اور پرماننٹ امیگریشن جو ہے اس کو کم کرنے کا ضرورت ہے, تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ گروتھ پاپولیشن میں نہیں دیکھی جا رہی ہے. کینیڈا نے ایڈمٹ کیے تھے جسٹ اوور 104,000 इमिग्रेंट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 और नेट इमिग्रेशन जो है वो अब टोटल करती थी 17,410, नॉन पीआर जो है वो ड्रॉप कर गए हैं 61,111, लेकिन इमिग्रेशन लेवल्स अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। तो भाईजान कब आपने ठीक करना है, इसको ठीक करो। पील रीजनल पुलिस जो है उसने आज फिर से जनाब दो लोगों को ब्रैम्पटन से जो है चार्ज किया है फॉर द सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल थेफ्ट एट LCBO, जिसमें कि वो कहते हैं जी कि $3,00,000 की शराब इन्होंने चोरी की है। ये अभी तक अनक्लियर है कि कौन कौन से स्टोर्स के ऊपर इन्होंने डाके मारे और किन किन स्टोर्स को टारगेट किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने नुकसान इतना पहुंचाया है ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन को। पुलिस ने इनके ऊपर 35 चार्जेस लगाए हैं। इनके नाम है जी अनुज कुमार, 25 ईयर्स का ये लड़का है और ये प्राइमरी सस्पेक्ट है। और इसके अलावा सिमरप्रीत सिंह, 29 इयर्स इसकी एज है और इसके बारे में एक्यूज किया गया है कि इसने इन एफर्ट्स के अंदर जो है इसका जो है साथ दिया था। और इन दोनों को जो है बेल हियरिंग के लिए अब सामने लाया जाएगा। तो अब इन दोनों को बेल मिल जाएगी, ये फिर बाहर आ जाएंगे, ये फिर इसी तरह थेफ्ट करेंगे। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब है क्राइम का क्या सिस्टम जो है ये इस मुल्क में चलाया जा रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खामनाई, उन्होंने रिजेक्ट किया है यूएस का कॉल। हमने आपको कल बताया था कि ट्रूथ सोशल पे बहुत बड़े बड़े बस दो वर्ड्स लिखे हैं कैपिटल लेटर्स में, अनकंडीशनल सरेंडर ट्रंप साहब ने, तो उसके ऊपर खामनाई साहब ने रिजेक्ट किया है ये इनका कॉल फॉर सरेंडर। और उन्होंने इसके अलावा धमकी भी दी है अमरीका को कि अगर आपने इन्वॉल्व होने की कोशिश की इसके अंदर तो फिर बहुत ही ज्यादा जो है इररिपेयरेबल डैमेज आपको आएगा। अली खामनाई साहब ने ट्रंप साहब को आज कहा कि ये जो आपके थ्रेट्स है ये और जो आपके जो एब्सर्ड स्टेटमेंट्स है इससे हमको बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा जी वाइज लोग जो कि ईरान को जानते हैं और जो हमारे लोगों को जानते हैं, हमारी हिस्ट्री को जानते हैं, उनको पता है कि इरेनियंस ये थ्रेट की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझते हैं। नवदीप वो दिखाएं ट्रंप साहब की पिक्चर विद अली खामनाई जो है वो, तो उसके अलावा वो कहते हैं जी कि हम बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे। और इनकी जो लोकेशन जो है वो कह रहे थे जैसे कि जी हमें पता है बड़ा इजी टारगेट है, उन्होंने तो आज इरेनियन मीडिया कह रहा है कि उनकी लोकेशन अननोन है। ये जो आज उन्होंने वीडियो जो है वो भी जो आज किया है उसमें बस हल्के से बेज रंग के कर्टन नजर आ रहे हैं और इरेनियन एक फ्लैग नजर आ रहा है और आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमेनी जो कि इनके प्रेडेसेसर थे जिनकी डेथ हो गई थी 1989 में, उनका एक पोर्ट्रेट इसके पीछे नजर आ रहा है। उसके अलावा कोई सराउंडिंग्स जो है उसका पता नहीं इस वीडियो में चल रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है इस्माइल बगी, उन्होंने आज कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रुप्स जो हैं वो ईरान के पास पास के कंट्रीज यानी कि गल्फ कंट्रीज यानी कि अरब कंट्रीज में वो स्टेशन हैं और बिल्कुल वो ईरान के वेपन्स की रेंज के अंदर हैं। तो कहने का उनका मतलब यही था, वेल्ड किस्म का उन्होंने भी थ्रेट दिया कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर ये जो बेसिस हैं कतर में, यूएई में, सऊदी में, बहरेन में, इजिप्ट के अंदर भी, तो ये सारी और जॉर्डन में, तो उन सब के ऊपर फिर ईरान जो है वो अटैक कर सकता है। एक जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि जो इसराइल के अटैक्स हैं ईरान पे उसमें 585 जो लोग इंक्लूडिंग 239 सिविलियंस जो हैं ईरान में उनकी डेथ हुई है और ओवर 1300 जो है जख्मी हैं। ईरान ने जो फायर किए हैं 400 मिसाइल्स और हंड्रेड ऑफ ड्रोन्स, उसके अंदर सिर्फ 24 इजरायलीज जो है उनकी डेथ हुई है और सिर्फ 100 लोग जो हैं उनके वो जो हैं जख्मी हैं। ट्रंप साहब ने इसके अलावा जो आज उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अनसर्टन हूं, मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं और मुझे ये पता है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो बिल्कुल डिफेंसलेस है। और जो है वो इसके अलावा उन्होंने एक और भी दावा किया कि ईरान ने जो है रीच आउट हमें करने की कोशिश की है मगर ये बहुत लेट है। इसके ऊपर भी ईरान ने आज कंप्लीटली ये रिजेक्ट किए हैं इनके क्लेम्स और उन्होंने कहा कि हमने कोई रीच आउट करने की कोशिश नहीं की है और ना ही हम जो है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है ओमान में चला रहे हैं। इसके अलावा आज ईरान ने कंप्लीट जो है शट डाउन कर दिया है इंटरनेट को। उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल जो है इस नेटवर्क को मिसयूज कर रहा है अपनी मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए, तो ये जो है इनको इन्होंने बंद किया है। आज बहुत दिनों के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट जो शी जिपिंग है उन्होंने अब अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी है और उन्होंने ये जो एस्केलेटिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर बात किया है जो इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। आपको पता ही है कि इससे पहले चाइना ने जो है वो जो शी जिपिंग साहब है उनका मुलाकातें उन्होंने किए थे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजक्शिया साहब के साथ, اور کہا تھا کہ ہم ایک جو ہے وہ چلائیں گے یعنی انہانس کریں گے اپنے ٹائز کو. آج ایک سمٹ ہو رہی ہے قزاقستان میں, وہاں پہ شی زپنگ صاحب نے کہا کہ یو ایس کو بالکل ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی بھی جو یہ جو وعدے کرتے رہے ہیں ٹرمپ صاحب اپنے الیکشن ٹریل پہ کہ میں بالکل دنیا میں وارز نہیں چاہتا ہوں, وہ ان کے پھر خلاف یہ بات جائے گی. چائنا نے کہا جی کہ ہم بالکل اپوز کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کا سوورینٹی سیکیورٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی بھی دوسرا کنٹری جو ہے وہ خراب کرے, اور یہ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کے حق میں نہیں ہے. اس کے علاوہ شی صاحب نے کہا کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز ڈی ایسکلیٹ کرے, اور جو بیجنگ ہے وہ اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے مڈل ایسٹ میں. اس کے علاوہ شی صاحب نے یہ جو فرسٹ پبلک ریمارکس اس کانفلکٹ کے اوپر دیے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط ہے, یعنی کہ ایران کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اس سے پہلے بھی چائنیز امبیسی جو ہے اس نے جو ایران میں ہے اس نے ایڈوائز کیا تھا جو چائنیز نیشنلز ہیں ایران میں کہ جتنا جلدی ہو سکے پاسبل ہے جتنا جلدی ادھر سے نکل جائے ایران سے. اور ترکیے اور آرمینیا, آذربائیجان اور ترکمینستان جو ہیں یہ پرائیورٹی روٹس ہیں, ان کے تھرو جو ہے وہ بالکل جو ہے چائنا کے اندر آ سکتے ہیں واپس, اور جو ہے وہ جو لڑائی ہے وہ کافی بھڑکتی جا رہی ہے, اور تہران پہ خاص طور پہ کافی کیونکہ اسرائیل کے جو ہے وہ حملے ہیں. رشین ڈیپٹی فارن منسٹر جو ہے سرجے ریبکوف, انہوں نے بھی آج وارن کیا ہے یو ایس کو کہ بالکل ڈائریکٹ ملٹری ایڈ جو آپ اسرائیل کو دے رہے ہیں اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ ریڈیکلی ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. تو یہ جو آج سٹیٹمنٹ ماسکو کی طرف سے بھی آیا ہے, اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو رشیا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ بھی بہت زیادہ مڈل ایسٹ کے اندر افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کی بہت ساری جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ملٹری پریزنس ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ ایران کے اندر. سرجے نیرشکن جو کہ ہیڈ آف رشیاز فورن انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے آج کا سچویشن بہت کریٹیکل ہے. اس کے علاوہ پیوٹن صاحب نے بہت سارے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن ٹریٹی سائن کیے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ جو کیے تھے ارلیئر دس ایئر, انہوں نے بھی دونوں سائڈس کو بولا کہ اس ہاسٹیلٹیز کو روکیں. ایجپٹ جو ہے اس وقت لیڈ کر رہا ہے 21 نیشن گروپ جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے, اور اس میں انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا جس میں بہت کنڈیم کیا اسرائیلی ملٹری اٹیکس کو اگینسٹ ایران. البتہ جو آج ایک رپورٹ چھپی ہے اسرائیلی ایک نیوز پیپر میں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عرب جو لیڈرز ہیں یہ تو خوش ہی ہیں اگر ایران ختم ہو جائے, اوپر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو عراق ایران کے اوپر جو اٹیکس ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے اوپر جو ایجپٹ ہے اس کو پرابلمز اس لیے آ رہے ہیں کہ ایران کی جو گیس سپلائز ہے وہ اب رک جائے گی, اور کافی ان کو جو ہے وہ پھر مسئلے پڑیں گے. آج یو کے جو پرائم منسٹر ہے کار سٹارمر, اس نے آج بہت ایک امپورٹنٹ ایمرجنسی کوبرا میٹنگ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر اینجلا رینر جو ہے انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ یو کے بالکل بیک کرتا ہے ڈپلومیٹک روٹ کو, لڑائی جھگڑے کو بند کریں. فرانس نے بالکل ریجیکٹ کیا ہے ملٹری سولوشن ٹو ایرانز نیوکلیئر ایشو, انہوں نے کہا جی کہ اب وہ پلان کر رہے ہیں ای یو پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک نیگوشیٹڈ سولوشن جو ہے اس کا لانا چاہیے. اس کے علاوہ جو اپیرنٹلی جو گلف سٹیٹس ہیں لیڈ بائی سعودی عربیہ وہ انگیج کر رہے ہیں ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئرز کو ٹو کام ٹینشنز بٹوین دا ٹو, لیکن اب اس میں سچائی کتنی ہے وہ معلوم نہیں ہے کیونکہ ماشاء اللہ سے ہمارے اپنے جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے ہی ایئر اسپیس کھولا ہوا ہے اسرائیل کے لیے ٹو اٹیک ایران, تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یو اے کے جو فارن منسٹر ہیں جی شیخ عبداللہ بن زائد, انہوں نے بھی وارن کیا ہے کہ انکیلکولیٹڈ اور ریکلیس سٹیپس اگر لیے گئے تو ایران اسرائیل کے بارڈر سے آگے چلی جائے گی یہ وار. ظاہر ہے کہ یہ وار ادھر تو نہیں رکی رہ جائے گی, پاکستان تو انشاءاللہ اپنا ڈیفینڈ کرے گا, ڈیفنس اپنے پہ کھڑا رہے گا, لیکن باقیوں کا کیا ہوگا. یعنی وہ شولے فلم آپ نے دیکھی ہے نا, وہ گبر سنگھ پوچھتا ہے تیرا کیا ہوگا رے کالیا, تو بس وہی ہے ان کا حال, تیرا کیا ہوگا رے کالیا. کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز ہیں اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اس وقت کے اوپر ایجنڈا پہ چل رہے ہیں, ان کا تو پھر ایجنڈا جو ہے نا وہ بالکل ہی ملیا میٹ ہو سکتا ہے اگر اسرائیل کی یہ وار جو ہے آگے بڑھ گئی. تو اسی کا یہ ذکر کر رہے تھے. यूए के प्रेसिडेंट जो हैं इससे पहले शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, उन्होंने इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजकशियां के साथ बात की है फोन पे और उन्होंने ये सारा जो डिस्कस किया है उन्होंने इसराइल के जो अटैक्स है। शेख मोहम्मद ने कहा कि यूएई जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव टॉक्स कर रहा है विद पार्टीज कंसर्न के सिचुएशन को काम किया जा सके और उन्होंने कहा जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। पता नहीं उनको फोन पे तो कहा अब खड़े है भी कि नहीं मालूम नहीं है। यूएई जो है उसने रिसेंटली वैसे तो अपने टाइज मेंट किए थे तेहरान के साथ और अब यूए की प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अब यूएई में रहना चाहता है। बहुत सारे इरेनियंस जो कि विजिटर्स थे या जो कि शॉर्ट स्टे के लिए आए थे जिनका अब स्टे जो है अब खत्म हो गया है, उनके वीजे भी खत्म हो गया, वो बहुत सारे ट्रेवल एजेंट से यूएई में पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो दुबई में ठहर सकते हैं, यहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, क्योंकि अब ईरान के हालात काफी खराब हो गए हैं तो वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं, तो अपने ओरिजिनल प्लान्स को वो चेंज करना चाहते हैं। ईरानी पैसे वाले लोग हैं, अच्छे बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं वहां पे यूएई के अंदर, तो वो कहते हैं कि यानी कि इधर ही रह जाएं, ईरान वापस ना जाएं। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है जी वो कॉन्स्टेंटली ये जो रेडिएशन लेवल है हवा में उसको वो कॉन्स्टेंटली कर रही है मॉनिटर। कतर का भी प्रॉब्लम ये है कि छोटा मुल्क है एंड अगेन दे आर ऑन अ मूव जो है वो फॉर प्रोग्रेस एंड बहुत सारे नए नए इनोवेटिव चीजें ला रहे हैं और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि अगर मुल्क के अंदर रेडिएशन आ गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनका एक बहुत ही एडवांस नेशनल रेडिएशन मॉनिटरिंग एक नेटवर्क है जो कि इन्होंने सेटअप किया था कुछ अर्सा पहला और वो कह रहे हैं जी कि वो राउंड द क्लॉक जो है ये रेडिएशन लेवल्स को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है और अगर कोई भी यहां पे गैस फील्ड्स में या कहीं पे भी कुछ भी अगर ईरान के रेडिएशन आई तो उसको फौरन ये डिटेक्ट करेंगे। कतारी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो है माजिद अल अंसारी, इन्होंने कहा जी कि ये वॉर ईरान और इसराइल के बीच में जो है ये बहुत ही गलत वक्त में शुरू हुई है क्योंकि हम इस वक्त गाजा के लिए सीज फायर हासिल करने का कोशिश कर रहे थे, हम अभी भी काम तो करते रहेंगे लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि अब इसकी तरफ लोगों का ध्यान रह जाएगा और लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये गाजा का जो सिचुएशन है इसको सेटल किया जाए, तो जाहिर है गाजा से भी नजर भी हटाने के लिए हो सकता है कि ये सारा कुछ ड्रामा जो है वो किया जाए। यूएस सेनेट जो है उसने बिल आज पास किया है, ये तो आमिर के लिए खबर है, ये खास तौर पर मैंने आमिर के लिए ढूंढी आज की खबर, ये यूएस सेनेट में आज पास हुआ है बिल टू क्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर यूएस डॉलर पेग्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन्स, इनको कहा जाता है स्टेबल कॉइन्स और ये बहुत ही वो कहते हैं जी वॉटरशेड मोमेंट है डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के लिए। इसको डब किया गया है जीनियस एक्ट और ये सपोर्ट करेगा बहुत सारे डेमोक्रेट्स, इसको सपोर्ट है बहुत सारे डेमोक्रेट्स की और जिन्होंने के ज्वाइन किया आज रिपब्लिकन्स को और वो बैक कर रहे हैं इसको कि एक फेडरल रूल्स जो है इस सिलसिले में लाना चाहिए। ये आज सेनेट में पास हुआ 68 वोट अगेंस्ट 30। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंट्रोल करते हैं रिपब्लिकन्स, उन्होंने आज ये बिल पेश किया है और अब ये ट्रंप साहब को भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए और वो कहते हैं जी कि हम डेजिग्नेट करना चाहते हैं मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू यूजुअली 1:1 यूएस पेग कॉमनली यूज्ड बाय क्रिप्टो ट्रेडर्स ताकि जो फंड्स है उसको टोकन्स के बीच में मूव किया जा सके। वो कहते हैं जी कि इसकी बहुत ज्यादा चूंकि जो है डिमांड होती जा रही है रीसेंट ईयर्स में तो हम चाहते हैं कि कुछ पेमेंट्स जो हैं इंस्टेंटली जो हो जाती है इसके थ्रू उसको इजी बनाया जाए। इफ साइंड इनटू लॉ तो ये बिल जो है ये रिक्वायर करेगा टोकन्स को कि ये दीज विल बी बैक्ड बाय लिक्विड एसेट्स लाइक यूएस डॉलर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स भी इस सिलसिले में आ सकते हैं, तो ये बहुत ही मेजर स्टेप है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान भी इनके साथ जो है बहुत क्लोजली काम कर रहा है आपको पता ही है। अच्छा जी हम यहां पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको आज की और इम्पोर्टेंट खबरें इंडिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की देंगे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
एना सोना कर लिया हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे जिसे फ्रिज स्टोव डिशवॉशर थ्री पीस किचन बंडल इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर एनर्जी सेवर एनर्जी स्टार फिर टीवी सेक्शन एच सोनी सैमसंग पैनासोनिक शार्प हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton या कॉल करो 905-450-2828-905-450-2828.
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए.
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स.
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी. ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी. मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000. फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त.
अयो इतना खूबसूरत घर.
आपने भी बेसमेंट के रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा. क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब.
कौन सी रेनोवेशन? टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ.
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं. बहुत मुनासिब दाम है और भाई आजमाइश शर्त है. गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस. कॉल 416-838-7837.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो.
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ.
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर.
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट.
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792.
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक.
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792. अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792.
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला. ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी? इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा.
ए जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा है. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दी ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ.
हाँ जी, तो वेलकम बैक. तो जनाब आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है कि ट्रंप साहब का आज मीटिंग हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, और वो अपने एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर थे वहां पे यूएस में. तो इनको व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम के अंदर आज जो है लंच एक दिया गया है, और दुनिया जो है इसके ऊपर बड़ी हैरान है. जाहिर है कि कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची भी लगी है इस चीज की, और ये भी कोई रिपोर्ट्स नहीं थी कि ये जो अपने ऑफिशियल विजिट पे आ रहे थे तो इसमें कोई लंच ट्रंप साहब के साथ शामिल था कि नहीं था, कुछ रिपोर्ट इसके बारे में नहीं है. बहरहाल जी आज ये जो लंच था ये व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम के अंदर हुआ. बीबी जरदारी जो है उन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिव स्टेप कहा. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और यूएस के टाइज जो है इसमें जो है बड़े अच्छे होंगे. खासतौर पर उन्होंने ट्रंप साहब का फिर से तारीफ किया. उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जो सीज फायर मीडिएट करवाया था उसकी बड़ी जो है वो तारीफ की गई. आज व्हाइट हाउस के अंदर पूछा गया कि भाई ये आसिम मुनीर साहब को क्यों बुलाया है ट्रंप साहब ने, तो व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी जो है एना कैली उसने कहा जी कि मुनीर साहब से मिलने का इरादा इसलिए ट्रंप साहब ने किया है क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर आया तो मुनीर साहब ने कहा कि ट्रंप साहब को ये जो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसको अवॉइड करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. और ट्रंप साहब तो कोशिश ही ये कर रहे हैं बड़े अच्छे से कि मुझे किसी तरह मिल जाए. तो उनको बड़ा प्यारा आ गया इनके ऊपर. उन्होंने कहा भाईजान आओ मेरे नाल खाना खाओ, है रोटी छटी आओ खाइए. तो ऐसा है. तो ट्रंप साहब जो हैं, इसके अलावा आपने कल का इनका जो ट्रंप साहब का ट्रूथ सोशल अगर आपने देखा है तो उसके ऊपर बड़े बड़े अगेन वर्ड्स में लिखा हुआ है. वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान. वो ब्रोमांस पाकिस्तान के साथ फिर से शुरू हो गया ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब फिर से वो बहुत सारी पाकिस्तान से काम है. ईरान की तरफ नहीं देखना, क्रिटिकल मिनरल्स हमको दो, रेकोडिक के अंदर हमको हिस्सा दो, है ना. तो वो अब फिर से ब्रोमांस पाकिस्तान के साथ अमरीका का शुरू हो गया है। तो वो जाहिर है कि आपको पता ही अमरीका का फेयर वेदर फ्रेंड है, वो कोई चाइना की तरह का तो फ्रेंड इन नीड तो नहीं है ना जी, वो तो फेयर वेदर फ्रेंड है। जब जब उसका फायदा होता है, जैसे अफगान वॉर में बड़ा ही प्यार पाकिस्तान के साथ चल रहा था और बड़ी तारीफें ज़ियाउल हक साहब की होती थी हैं जी, और फिर वैसे कहते हैं जी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तो बड़ा बढ़ाते हैं और फिर वो डिक्टेटर्स को तो क्या तो बीजेपी खड़े, तो बस जी वो उसी सिलसिले में है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये बड़ी है पाकिस्तान के साथ मुझे बड़ा प्यार है। अच्छा फिर उनको किसी ने बताया होगा भाईजन जी आपने क्या बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी बट मोदी ऑल्सो इज अ फैंटेस्टिक गाय है जी। तो उन्होंने कहा मैं जरा दोनों को मुलायम कर लूं, दोनों को मैं ना बैलेंस कर लूं, जरा मैं खुश कर लूं। तो अब अभी तक जो है व्हाइट हाउस से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है जिसमें कि बताया जाए कि इन्होंने क्या डिस्कस किया, लेकिन जाहिर है कि वो लंच पे उन्होंने यही कहा होगा भाईजान रोटी तो खाओ पर ईरान की तरफ नहीं देखना बिल्कुल तुम है जी। तो हम जो है तुम्हारे वो जो $2 बिलियन जो सेंटकॉम वाले तुमको देते थे वो जो हमने रोक दिए थे वो हम आपको दे देंगे, और बड़ी कहानियां पाइया होंगी इस तरह दिया अमरीका ने। तो अब देखेंगे कि जी अब क्या होता है, तो क्या स्टेटमेंट आती है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है लंच पे वो पता नहीं चला है। मुझे लगता है लंच जरा थोड़ा लंबा हो गया ऐसे। पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कहा जी हम रिड्यूस करेंगे टैक्स को सोलर पैनल्स के ऊपर टू 10% फ्रॉम द इनिशियली जो इन्होंने प्रपोज किया था बजट के अंदर 18% GST। यानी जुल्म देखो, गवर्नमेंट बिजली दे नहीं रही, लोग अपना पैसा लगा के 10-10 और 20-20 लाख रुपया लगा के कोई 10 KV का कोई 20 KV का वो लगवा रहा है सोलर पैनल, उसके ऊपर भी जी इनको टैक्स दो। भाई भाईजान तुम्हारा क्या लेना देना है, तुमको तो बल्कि उसके ऊपर जो है उनको वो देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए कि भाई भाईजान अपने साथ दो अगर घरों को भी अगर आप बिजली दोगे तो हम आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे। ना जी ना, उससे टैक्स लगाए। अच्छा जी आज बड़ी मेहरबानी की है कि 10% उसको कर दिया। इसहाक डार साहब ने आज नेशनल असेंबली के अंदर कहा कि जी हम ये जो है कम कर रहे हैं विच इज 8% लोअर देन इट वॉज फर्स्ट प्रपोज इन द बजट। और वो कहते हैं जी कि ये रिडक्शन उस वक्त आया जब नेशनल असेंबली की फाइनेंस जो कमेटी थी उसने यूनानिमसली इस चीज को जो है वो रद्द किया था, और उन्होंने कहा था कि ये टारगेट्स जो हैं वो मैच नहीं करते हैं IMF के जो डील है उसके साथ। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी कहा कि चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर काफी सोलर इम्पोर्ट्स हो रहे हैं और ये बढ़ गए हैं ओवर 110 बिलियन रुपीज के जो नेक्स्ट ईयर तक और भी बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर न्यू लेवी जो है आपने जो लगाई है उससे ये मोमेंटम कम हो जाएगा। यानी आपकी बिजली पर लोग रोते रहेंगे बैठे रहेंगे अपना पैसा नहीं लगाएंगे, फिर लोग कहेंगे जी बिजली नहीं है, आप भी नहीं उनको दोगे, लोगों को भी नहीं करने दोगे। तो अब ये जो सोलर अडेप्टेशन ड्राइव जो चल गई है वो कहते हैं जी कि इसको अब चलने दो, और इसमें 71 मिलियन US डॉलर्स जो है उसके एडिशनल टैक्स इनको रेवेन्यूज आएंगे। तो वो कहते हैं जी कि बस अजय इतना ही रखो और ज्यादा मतलब वदन की जरूरत नहीं है आगे है जी ऐसे है। तो लेकिन जाहिर है कि आपको पता ही है कि उसके अंदर ये जो सोलर पैनल्स हैं इसके अंदर कौन सी फैमिली इन्वॉल्व है, ये शरीफ साहब की फैमिली इन्वॉल्व है जाहिर है, अब उनको तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और भी कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो वो चाहते हैं जी लोग अब दबादब ये लगवाए जो कि विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बिजली है उस पर इंसार लोगों का कम भी होगा, वैसे भी क्लीन एनर्जी है ये। तो शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी भी कह रहे हैं कि हम तो ग्रीन पाकिस्तान की तरफ और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने आज हाई लेवल कमेटी जो है उसमें कहा कि कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल प्रोसेस जो है उसको मुल्क में बढ़ाने की जरूरत है। एक मीटिंग चेयर कर रहे थे इस्लामाबाद में जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन जो है वो मेरी गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी रहेगा। उन्होंने जो रेलिवेंट अथॉरिटीज थे उनको कहा जी कि पॉलिसीज बनाए भी और लोगों को एनकरेज भी करें डिजिटल मनी ट्रांसफर्स और पेमेंट से। उन्होंने कहा जी कि ये न्यू इनिशिएटिव जो हमने बजट में लिए है उसमें प्रमोट करेंगे कैशलेस इकोनॉमी को और डिस्करेज करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी को, और ये डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम फॉर शॉपिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफर जो है इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी रमजान के बीच में जिन लोगों को फाइनेंशियल एड चाहिए थी उनके डिजिटल वॉलेट्स में हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और एफिशिएंट तरीके से उनको पैसे भेजे थे, बेनिफिशियरी जो थे उनको पैसे मिल गए थे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। गुड, ये तो बहुत ही अच्छा, अगर ये इंप्लीमेंट कर दे तो अच्छा कदम है। पाकिस्तान के 3 स्कूल्स जो है 2 लाहौर में और 1 क्वेटा में जनाब उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2025। के लिए अकॉर्डिंग टू द अवार्ड्स फाउंडर टी फॉर एजुकेशन, ये अवार्ड्स जो हैं दुनिया के बेस्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है स्कूल्स यानी कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस उनको दिए जाते हैं, और इसके बड़े एक्सपर्ट जजिंग जो है वो पैनल है और वो बड़ा ही रिग्रस इनका क्राइटेरिया है। ये देखते हैं इसके अंदर कि इसमें स्कूलों की कम्युनिटी कोलैबोरेशन कितनी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कितने हैं, इनोवेशन है, और इसके अंदर जो है ऐसी एबिलिटी है बच्चों को बताया जाए कि ओवरकम एडवर्सिटी कैसे करना है और हेल्थ जो है उसको कैसे बढ़ावा देना है। इसमें जो स्कूल्स जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं वो हैं संजन नगर पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल और नॉर्डिक इंटरनेशनल स्कूल लाहौर, और इसके अलावा जो है बीकन हाउस प्रोग्राम जूनीपर कैंपस इन क्वेटा जो है उसको भी इसमें नेम किया गया है। पीआईए जो है वो जनाब उसके लिए अच्छी खबर है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज जो है वो शुरू कर रहा है फ्रॉम लाहौर टू पेरिस आफ्टर 5 years ऑफ सस्पेंशन। ये 1 weekly फ्लाइट जो है PK 733 ये डिपार्ट की आज लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 बजे के करीब पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और उसमें 276 पैसेंजर्स थे टू पेरिस। यहां पे बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी जो थी एयरपोर्ट पे की गई थी टू कमेमोरेट द री लॉन्च ऑफ रूट, और इसने रिवाइव किया है पीआईए का वन ऑफ द की इंटरनेशनल रूट्स। पीआईए जो है ऑलरेडी 2 weekly फ्लाइट ऑपरेट करता है बट दैट इज फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेरिस। ये जो न्यू रूट है ये अब ऑफर करेगा पैसेंजर्स को जो पंजाब में है एक और भी ऑप्शन, और जो यूरोप जाना चाहते हैं उनके लिए जो है आसानी रहेगी। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है जी उसने अनवेल किए हैं बहुत ही की फीचर्स ऑफ पाकिस्तान न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025, ताकि रिलायंस रिड्यूस की जा सके ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके और लोकल इंडस्ट्री भी इसका फायदा उठाए। ये 5 year पॉलिसी जो है इट इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो कि गवर्नमेंट को सेव करेगी 2.7 बिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जिसकी की कीमत इंटरनेशनल मंडी में 1 बिलियन US डॉलर्स है इन सेविंग्स ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स पर ईयर। गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं इसके लिए 9 बिलियन रुपीज इन सब्सिडीज फॉर ई बाइक्स एंड ई रिक्शॉज फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर्स बजट। ओवर 116,000 ई बाइक्स एंड 3,171 ई रिक्शॉज जो है वो इस सब्सिडी से फायदा उठाए गए। सब्सिडी जो है वो एलोकेट उसका जो एलोकेशन है वो रीच कर रहा है 100 बिलियन रुपीज पे। 25% कोटा जो है इसमें लड़कियों के लिए रखा गया, यानी कि अगर कोई लड़कियां अगर कोई इस तरह के मोटरसाइकिल ई मोटरसाइकिल जो है वो चलाना चाहते हैं तो उनके लिए भी, और वो कहते हैं जी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट और एनकरेज करेगा इनोवेशन को इन ऑटो सेक्टर। जाहिर है कि बच्चे फिर जो हैं वो फिर ई व्हीकल्स जो हैं वो यानी ईवीज बनाने की तरफ जाएंगे तो इसमें आएगा। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर जो है आज काफी तकलीफ हुई आसिम साहब की जो आज मुलाकातें थी ट्रंप साहब के साथ उसके ऊपर, और ऑपोजिशन बहुत ज्यादा भड़की हुई नजर आई। कांग्रेस ने तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके आज खेला, उन्होंने कहा जी मोदी जी इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सारे के सारे जो लीडर्स हैं उनको बताए कि ट्रंप साहब ने के साथ जो इनका 35 मिनट का फोन कॉल हुआ है उसमें इन्होंने क्या क्या बातें किए हैं, और ये नेशन जो है उसको कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ये ह्यूज सेटबैक है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया है। तो क्या मोदी जी ने अपना डिसप्लेजर शो किया है ट्रंप साहब को कि नहीं? कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती तो वो अपना डिसप्लेजर जरूर शो करती अमरीका को। उन्होंने कहा जी कि ये जो एक आपको इमीडिएटली पहलगाम रिव्यू कमेटी बिठाने की जरूरत है, जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी बिठाया गया था जस्ट इन 3 days आफ्टर कारगिल वॉर, जिसको के चेयर कर रहे थे के सुब्रमण्यम जो कि एस जयशंकर के फादर थे, और उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप इमीडिएटली पार्लियामेंट में आके ये भी सफाई दे कि जो ट्रंप साहब कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने जंग रुकवाई और मैंने इनको ट्रेड का जो है वो हवाला दिया था, तो इस चीज को भी आप क्लैरिफाई करो। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ ऑप्टिक्स के ऊपर बिलीव करती है, सब्सटेंस उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान को ट्रिपल झटका जो है वो लगा है और इसकी जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो इंतहाई खराब है। एक तो सबसे पहले ये कि आसिम साहब जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी उनको स्पेशल वन ऑन वन लंच पे बुलाया। दूसरा सेटबैक वो था जिस वक्त सेंटकॉम के जनरल माइक कुरला ने ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है इन काउंटर टेरर ऑपरेशन। पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर कैसे हो सकता है, इट इज फिनोमिनल परपेट्रेटर। ये कहा जनाब जयराम रमेश ने। भाईजान जो मर्जी आपने कहना है, आपको तकलीफ आपको है, हमको नहीं है। वो कहते हैं जी जिस मुल्क में बिन लादन मिला था उससे आप उसको आप कैसे अपना फिनोमिनल पार्टनर, बस तुसी बिन लादन बिन लादन बिन लादन रोंदे रहो। तो अपने मुल्क दे विच जड़ी सीसीस दी रिपोर्ट आई है कि सबसे बड़े टेररिस्ट आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, उसकी तरफ आप ध्यान ना देना, ठीक है जी। और ये मुसलसल आ रही है, फाइव आईज की खबरें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, अमरीका कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन आप बस बिन लादन को रोते रहना, रो और रो, कोई बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो वो जी वो कहते हैं जी कि ये इसके जवाब जो है वो मोदी जी को दे। अच्छा जनाब हूं आ गई और भी बढ़िया बढ़िया खबर, वही जो हम कहते हैं लश्करे मोदी में बहुत सारे लोग शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि नई नई खबरें आ रही हैं। पहले तो पता चल रहा था कि सिर्फ गौतम अदानी साहब लश्करे मोदी का हिस्सा है, अभी क्या हो गया है कि मुकेश अंबानी साहब का भी नाम आ गया है जी इसके अंदर। अच्छा अब क्या हुआ है, रिलायंस फॉर वन और रियलिटी डेवलपमेंट जो है ये एक यूनिट है कंपनी की, रिलायंस की, जिसको जाहिर है कि कंट्रोल करते हैं मुकेश अंबानी जी। वो कहते हैं जी कि इन्होंने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी नहीं है जी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अंबानी साहब ने पे किया है $10 million डेवलपमेंट फी टू ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अलेजली। ये जो रियल एस्टेट इनकी फर्म है जिसको कि ये ओन करते हैं और उसके जो ट्रंप नाम जो है वो लेने के लिए, उसके लाइसेंसिंग के लिए मुंबई के, आपको बताइए ना कि ये ट्रंप टावर्स वगैरह सारी दुनिया में जाके खोलते हैं, ट्रंप साहब उसमें एक रुपया नहीं डालते, वहां की गवर्नमेंट्स वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन डालते हैं, वो सिर्फ अपना नाम देते हैं और उस नाम के वो पैसे लेते हैं उनसे। तो उसी तरह का वो कहते हैं जी कि मुंबई में जो ये लाइसेंस लेना चाहते थे उसके लिए $10 million जो है मुकेश अंबानी ने दिए। मुकेश अंबानी साहब ने ज्वाइन किया था बहुत सारे फॉरन डेवलपमेंट्स को जिस वक्त ये ट्रंप साहब की रियल एस्टेट फर्म जो है इसके अंदर जो है पैसे आने शुरू हो गए थे, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल। वो कहते हैं जी कि ट्रंप साहब की एनुअल फाइनेंसिंग डिस्क्लोजर रिपोर्ट जो है उससे हमको ये सारा पता चला है कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये आए थे यहां से वियतनाम, दुबई, सऊदी अरेबिया, और इसके अंदर उन्होंने पे किए हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को ऑल टुगेदर 44.6 मिलियन इन फॉरेन लाइसेंसिंग एंड डेवलपमेंट फीस इन 2024। उन्होंने कहा जी कि 8.2 मिलियन इन 2023 दिए गए थे, 9.4 मिलियन दिए गए थे 2022 में। वो कहते जी ये क्लियर तो नहीं है कि रिलायंस ने अभी तक ये फी पे कर दी है फॉर प्रोजेक्ट इन मुंबई, लेकिन अंबानी साहब की बहुत ज्यादा मुलाकातें जो है ट्रंप साहब के साथ चल रही है, उनके इनॉग्यूरेशन के लिए भी वो यूएसए में आए थे, और उसके बाद जो दोहा के अंदर जो कतर के अमीर ने एक डिनर दिया था उसके अंदर भी लास्ट मंथ ये देखे गए थे, और ट्रंप साहब के लिए जो उन्होंने दिया था तो उसमें भी ये देखे गए थे मुकेश अंबानी साहब। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब की ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर इन्होंने ये सारी फॉरेन डीलिंग्स जो हैं ये रोक दिए थे। उन्होंने कहा था जब तक ट्रंप साहब ऑफिस में रहेंगे वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनके जो लॉ है जो अमरीका का उसमें भी ये है कि आप अगर इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो आप कर नहीं सकते हैं, तो अमेरिका का सदर हुए तो वो फॉरेन डीलिंग्स करे उसके लिए मना है। लेकिन जो इनके बेटे हैं ट्रंप जूनियर और इनके भाई जो हैं एरिक ट्रंप, उन्होंने एक कतर बेस्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर मे के अंदर एक अटेंड की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने उस वक्त हमारे बाप ने किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ कोई डील नहीं की थी, फिर भी हमारी फैमिली को क्रिटिसाइज किया गया था, तो अब यानी कि वी डोंट केयर एंड वी आर गोइंग हेड विद द डील्स। हां हम सिर्फ इतना ही ख्याल कर रहे हैं कि ये डील्स जो है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ ना की जाए, यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी टाइप के उनके साथ करें, यानी कि जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके साथ ना करें। तो वो कहते हैं जी हम बिल्कुल वी वॉन्ट टू प्ले बाय द रूल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अच्छा जनाब टॉम क्रूज साहब दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर हैं जी, तो आप सोचे जरा कि एक भी उनको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, हालांकि इनको 4 नॉमिनेशंस मिले हैं, लेकिन अब इनको ऑस्कर मिलेगा फिर भी मूवी के लिए नहीं, मूवी किसी के लिए नहीं मिल रहा, हालांकि बहुत ही डेथ डिफाइंग स्टंट्स करते हैं और बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बड़ी इनकी फिल्में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर नहीं मिला। अब एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने अनाउंस किया है कि वो इनको एक ऑनररी ऑस्कर देंगे एट द अपकमिंग गवर्नर्स अवार्ड्स इन नवंबर, लेकिन इनके किसी फिल्म के रोल के लिए नहीं, हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म उसके लिए इनको दिया जाएगा, ठीक है ऐसे। अच्छा जनाब, एक ऐसी फिल्म बनी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो जो है फेल, उसको फेलियर कहा जाता है। तो ये कौन सी अब मूवी थी? ये इन 1927 बिजमैन हॉवर्ड ह्यूजेस, जिसकी की उम्र 21 इयर्स थी, उसने सोचा कि मुझे फिल्म का डायरेक्टर बनना चाहिए और उसने मूवी बनाई थी वर्ल्ड वॉर वन का जो ये मूवी थी इसके ऊपर, इसका नाम था हेल्स एंजल्स। और इसकी फिल्मिंग उन्होंने शुरू की थी 1927 में, और पहले तो ये खामोश फिल्म थी, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर से प्रोडक्शन करो और फिर से ये इसका जो है इसके अंदर आवाज होनी चाहिए। तो ये फिल्म का जो बजट था ये 2.8 मिलियन बन गया था, और उस जमाने के हिसाब से बेतहाशा ये हॉलीवुड की एक्सपेंसिव फिल्म थी, क्योंकि उस जमाने में हॉलीवुड की फिल्में 1 मिलियन डॉलर्स के बीच बीच में, यानी सोचो जी 1927 में 1 मिलियन डॉलर्स वो कहते थे उसके बीच में रखो। हेल्स जो एंजल्स था इसका ह्यूज ओपनिंग हुआ था, लोग लाइनें लगा लगा के वहां पे ये फिल्म देखने आ रहे थे, एंड दे हेल्ड द बिगेस्ट इवेंट इन हॉलीवुड हिस्ट्री ऑन May 27, 1930। सारी दुनिया ने, क्रिटिक्स ने बेतहाशा इसकी तारीफ की, खासतौर पे वो जो एरोप्लेन्स के डॉग फाइट्स थे उसकी बहुत लोगों ने तारीफ की, क्योंकि इस तरह की चीज कभी भी देखी नहीं गई थी। उसने बहुत अपने जमाने के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी तोड़े और 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स भी कमाए, और वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग ग्रॉसिंग फिल्म थी अपने जमाने की। सिर्फ ये बेन हुर से पीछे रह गई थी, जिसने 9 मिलियन यूएस डॉलर्स उस वक्त कमाए थे, और विंग्स ने 3.6 मिलियन, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 3 मिलियन, लेकिन फिर भी इसको बॉक्स ऑफिस फेलियर कहा गया, क्योंकि ये जो अपना इन्वेस्टमेंट था 2.8 मिलियन का वो रिकवर नहीं कर सकी थी। पायन, व्हाट इज दिस जी, है देखो। और जनाब हमारी बाजी, शी इज बैक इन न्यूज, कंगना रनावत जो है उनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि दिल्ली में होंगे फ्रॉम September 27 टू October 5। इंडिया की पैरा